नमस्कार, ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव पर यह हमारी विशेष प्रस्तुति है ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। पर्यावरण के लिए ये दिन जो हम सभी मनाते आए हैं, उसके आज मायने बदल गए हैं। इस बदलते वक्त में हमें पर्यावरण का ख्याल रखने की आवश्यकता क्यों है, क्या हम कर सकते हैं, इस पर आज जानकारी हासिल करते हैं। आध्यात्म का पर्यावरण से गहरा संबंध है। अक्सर हम इसे पुराने ग्रंथों में देखते हैं, मगर आज की जीवन शैली में ये धीरे धीरे वो कनेक्ट मिस होता हुआ नजर आता है। आइए आज हमारे समय के एक प्रख्यात आध्यात्मिक शिक्षिका, जिन्होंने लाखों लोगों को आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर किया है, उनसे इस विषय पर गाइडेंस लेते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारीज की यूरोपीय निदेशिका ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जयंती। दीदी, आपका स्वागत है।
ओम शांति।
पहले तो पर्यावरण दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं दीदी। ये जो दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, ये हम याद करते हैं कि मनुष्य का प्रकृति के साथ एक बहुत गहरा संबंध है, और आज प्रकृति में जो कुछ भी गड़बड़ होती हुई हम देखते हैं, उसके लिए मनुष्य कारण है, ये भी हम समझते आए हैं। आध्यात्म के जगत में इस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्या संबंध है मनुष्य का प्रकृति के साथ?
आज यदि हम बातचीत कर रहे हैं, वो प्रकृति के आधार पर ही कर रहे हैं। आत्मा को यदि ये पांच तत्वों का शरीर न मिला हुआ होता तो हम यहाँ हाजिरी कैसे हो सकते, हमारी जीवन तो संभव ही नहीं होती, हम बातचीत भी नहीं कर पाते। तो हमारा जीवन का मतलब ही है आत्मा, पुरुष और प्रकृति दोनों का कनेक्शन, तभी हम कहते हैं जीव आत्मा। और फिर साथ साथ जबकि परमात्मा हमारा बाप है, प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति के बगैर हम क्या कर सकते थे? हमको जो पानी मिलता है, जो श्वास लेने का होता है, जो हमें भोजन पान करते हैं, वो सब कुछ प्रकृति द्वारा ही हमें सब कुछ मिला है। और लोग जब जीडीपी का वर्णन करते हैं तो उन्होंने शायद नेचुरल रिसोर्सेस का उसमें कुछ लगाया ही नहीं है हिसाब, परंतु सब कुछ नेचर के द्वारा ही वो बना है। इंडस्ट्री भी नेचर के आधार से ही चल रही है। तो अपनी मानव जीवन का आधार है प्रकृति, और हम लोगों ने ये बात भूल करके हम लोगों ने समझा है कि पुरुष ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और फिर प्रकृति को जितना हमें सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट रिगार्ड रखना चाहिए, जितना हमें उसको सेक्रेट मानना चाहिए, हम लोग ये बातें सब भूल गए हैं। तो फिर और ही हमने प्रकृति के ऊपर सारा अपना कचरा फैलाया है, हवा में, पानी में, धरती में। तो फिर वो जो सारा अभी पोल्यूशन हो गया, दूषित हो गया है, अभी उसका हम नतीजा देख रहे हैं कि कैसे तबीयतों पर उसका असर आ गया है। तो यदि आज के दिन हम फिर से इस बात को स्मृति में लाएं कि हम भी तो प्रकृति के तत्व के आधार पर ही चल रहे हैं, और धरती और आकाश के बीच में जो भी प्रकृति है वही हमारी पालनहार है, तो यदि हम ये भावना रख करके प्रकृति को फिर से वो रिस्पेक्ट देवे तो अपना नेचुरल एक कोऑपरेशन बन जाए। परंतु आज वो कोऑपरेशन टूट चुका है, तभी हम देखते हैं कि कहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी, कहाँ पर बहुत ज्यादा पानी, कहाँ पर बिल्कुल पानी कुछ भी नहीं है, फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं। तो मनुष्य आजकल ये सोचता नहीं है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा।
जब हम आध्यात्म के बारे में सोचते हैं तो एक चीज देखने को मिलती है कि आध्यात्म हमेशा से नेचर को रिस्पेक्ट करने के बारे में सिखाता आया है। हम एलिमेंट्स को वर्शिप करते हैं, एक रिस्पेक्ट की भावना से, एक पूज्य स्वरूप में उनको देखते हैं। रिवर्स को भी भारत में बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये सारी चीजें मान्यता में तो हैं, बट ऐसा क्या गैप हो गया जिससे रिलीजन के नाम पर हम वर्शिप तो कर रहे हैं बट प्रैक्टिस में हम पोल्यूट कर रहे हैं? व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या चीज मिसिंग होती है इसमें से?
हम लोगों ने दोनों बातों को अलग कर लिया। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन को कहा कि बस ये तो सिर्फ सप्ताह में एक दिन के लिए है और बाकी हमारी जीवन और कार्यक्रम अलग है, और उसमें जबकि लोभ और अहंकार आ गया, तो अहंकार वश हमने समझा हम प्रकृति को जीत सकते हैं, प्रकृति को हम वश कर सकते हैं। और फिर साथ साथ लोभ आ गया, मटेरियलिज्म आ गई कि इन्फिनिट रिसोर्सेस है, जितना हम चाहे धरती से ले सकते हैं, परंतु हम भूल गए हैं कि जो प्लैनेट है वो लिमिटेड है, मनुष्य की डिजायर्स अनलिमिटेड है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो स्पिरिचुअलिटी को भी अलग किया अपने जीवन से कि दैट्स इट्स ओन डिपार्टमेंट, उसका कनेक्शन क्या है हमारे जीवन के साथ हम भूल गए। परंतु लोभ जब आ गया तो जितना धरती और जो रिसोर्सेस है धरती के, महात्मा गांधी ने कहा कि जितनी सबकी आवश्यकता है उतनी धरती संभाल सकती, परंतु यदि एक व्यक्ति को भी लोभ आता तो कोई उसको संभाल नहीं पाता। तो मैं कहेंगी लोभ जब से आ गया बहुत विकराल रूप में, तब से फिर हम लोगों ने सोचा कि बस हमें धरती से निकालना ही है, हमें भी कुछ देना है वापस, ये तो बिल्कुल ही हम भूल गए। और जब हमने सोचा कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो हम लोग तो पूरा ही पोल्यूशन तो क्या, परंतु धरती के ऊपर जैसे कि हमने अत्याचार कर दिया
जी। जब हम ये चीजें देख रहे हैं कि ये समस्या है, तो इस समस्या का समाधान भी हमारे पास है, क्योंकि मनुष्यों ने इस चीज को खराब किया है, तो इसे ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इस साल का थीम यही है कि री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। पिछले दिनों जब हम अर्थ डे पे बात कर रहे थे, आप और डॉक्टर वंदना शिवा के साथ एक बातचीत हो रही थी, तो आप दोनों ने ये बात कहा, ये सिर्फ रिस्टोर शब्द अच्छा नहीं है, रिक्रिएट शब्द होना चाहिए। फिर से वो एक नया क्रिएशन करने के लिए हमें कोशिश करनी है, पुनर्संरचना, पुनर्रचना करनी चाहिए। और उसके लिए एक और शब्द इस साल आया है, वो है री इमेजिन। हम पुनः किसी चीज को पुनर्कल्पना करें, फिर से एक नए तरीके से इमेजिन करें। तो ऐसे में आध्यात्म बहुत सारी चीजों के लिए हेल्प कर सकता है। इसको री इमेजिन करने के बारे में आप कुछ बताएं कि कैसे हम री इमेजिन करें, इमेजिन करना क्यों जरूरी है।
कोई भी चीज जब पुरानी होती है तो आप सोचो कि शुरुआत पुरानी नहीं होती है, जरूर कुछ नई चीज शुरू में थी जो फिर धीरे धीरे पुरानी होती गई है। तो अब हम ऐसे टाइम पर पहुंचे हैं जबकि जमीन कई स्थानों पर बिल्कुल कलराठी बन गई है, तो ऐसे समय पर हमें बिल्कुल याद आना चाहिए कि कोई समय था और हर देश के जो भी शास्त्र है सारे विश्व भर में वो बताते हैं कि पैराडाइज किस प्रकार से था, यूटोपिया किस प्रकार से था, ड्रीमलैंड, सत्युग, द्वारका, ये सब भिन्न भिन्न शब्दों से वो याद करते हैं। परंतु वो ऐसे जगह थी जहां मनुष्य और प्रकृति दोनों का सहयोग रहता था, एक दो के सहयोग के आधार पर वो कितनी सुंदर रचना थी। प्रकृति इतनी अपनी नए रूप में बिल्कुल उस समय इतना प्रकाश देने वाली, इतना सबको सुख देने वाली, बिल्कुल हर बात, नदी भी अपने कायदे अनुसार चलती थी, नदियों में भी खुशबूएं थी क्योंकि जो हर्ब्स थे उसमें ऑटोमेटिकली कोई केमिकल्स नहीं डालना पड़ता था खुशबूई के लिए, परंतु वो हर्ब्स से ही वो खुशबू फैलाती थी। और फिर वहां कुछ हिंसा न होने के कारण फिर ऐसा समय था जबकि न सिर्फ मनुष्य आपस में शांति में रहते थे, परंतु जो भी जीव जंतु पशु पंछी है सब आपस में मिलजुल करके रहते थे, जिसमें कहते हैं लायन और लैम भी इकट्ठा ही पानी पीते थे एक ही जगह पर। तो मैं समझती हूँ कि वो संसार था सत्युग का, और फिर धीरे धीरे हम आकर के कलयुग में पहुंचे हैं, परंतु कलयुग में हम वो इमेजिन करें सत्युग का संसार किस प्रकार से था। और जब वो नक्शा हमारे सामने आ जाता, आज फिर से हम उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, परंतु उसका बेसिक फाउंडेशन ये है कि हम फिर से अपने स्वमान में रहे, धरती माँ को भी हम सम्मान देवे, और फिर रिस्पेक्ट के आधार पर फिर से नेचर को, प्रकृति को हम फिर से उस नवीनता में ला सकते हैं। जब सेक्रेटनेस चले जाती है, रिस्पेक्ट चला जाता है, फिर तो अत्याचार ही होता रहता। तो अब फिर से वो हमें करना होगा। परंतु मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात भी बताती हूँ। जिस स्थान पर आप बैठे हैं ज्ञान सरोवर, मुझे याद आता कि जिस समय अपना सिर्फ एक ही कैंपस था पांडव भवन माउंट आबू में, तो उस समय अपनी जो दादी जी थी उनको ये संकल्प था कि किसी और जगह भी जमीन लेनी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का नाम बढ़ता जा रहा था, लोग योग सीखने चाहते थे, राजयोग खास करके। तो उस समय फिर क्या रहा कि एक ग्रुप था दूध वालों का परिवार, तो वो अपने पास आए और जो अपना दूध को संभालने वाला भाई है उनको कहा कि ये जमीन हमारी काम की नहीं रही है, आप लोग खरीदने चाहेंगे। तो उसने पूछा कि क्यों काम की नहीं रही है, बताया कि जमीन कल रात ही हो गई है, हम लोग नहीं उसको यूज कर सकते। तो दादी जी जब गई देखा कि बहुत सुंदर स्थान था, तो वो हम लोगों ने नक्की किया कि हम ले लेंगे, और गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एक कंडीशन डाला कि एक तो पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटना है, और दूसरा फिर जो पत्थर है, रॉक्स है पहाड़ के, उसको नहीं तोड़ना है। तो आर्किटेक्ट से इतना सुंदर डिजाइन बन गया है जो बिल्डिंग्स का उस रॉक के द्वारा, फॉर्मेशन के द्वारा वो डिजाइन किया आधार इस प्रकार से। परंतु फिर जब थोड़ा बहुत एस्टेब्लिशमेंट अपना हो गया, खूब सारी जमीन और भी थी, तो उसमें लोग प्लांटेशन करते गए, फ्रूट ट्रीज, वेजिटेबल्स इत्यादि। और फिर जो बाजू वाली जमीन थी, सामने वाली थी, वो भी अपने पास आ गई, तो वहां पर भी खूब सारे वेजिटेबल्स और फ्लावर्स वगैरह की प्लांटेशन कर दी है। मैं फिगर्स नहीं बता सकती हूँ, बट इन थाउजेंड्स थाउजेंड्स के अंदाज में उस अपना जो ज्ञान सरोवर है उसके आजू बाजू और उसके अंदर भी वो सारी प्लांटेशन की गई। और पहले वो कहते थे ये कालराठी जमीन है, परंतु योग के वाइब्रेशंस, प्रेम का व्यवहार और आपस में जो लेन देन हार्मनी का चलता, वो वाइब्रेशन से आज उसी जमीन से कितने किलोस किलोस के अंदाज में फल निकलता, सब्जियां निकलती है, जो तीनों ही कैंपसेस में फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने प्रैक्टिकल देखा कि रिक्रिएशन इज पॉसिबल। ऐसे नहीं कि हम लोगों ने ही खुद उस जमीन को बंजर जमीन बना ली है परंतु उसको छोड़ देवे, नहीं, उसको फिर से प्यार की पालना दियो, गुड वाइब्रेशंस दियो, योग के द्वारा परमात्मा की याद की शक्ति के वाइब्रेशन से वही जमीन फिर से उसमें नई जान आ जाती है, और वो जमीन फिर से जैसे कि रीजेनरेट हो जाती।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, जो एग्जांपल आप दे रहे थे उससे पता चलता है जिन लोगों ने ब्रह्मा कुमारी ज्ञान सरोवर कैंपस देखा है वो कोरिलेट कर पा रहे होंगे अभी कि ये कितनी खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। दोस्तों, जयंती दीदी जी हमारे साथ हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछिए। आप पर्यावरण के लिए क्या करते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कमेंट्स को स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। हमारे पास एक और प्रश्न है दीदी, इस बार ये बोला गया है कि रिस्टोरेशन जनरेशन, एक पूरे जनरेशन को रिस्टोरेशन के काम के लिए लगना है, और एक पूरा ये जो डिकेड है ये इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का डिकेड है। तो ऐसे में रिस्टोरेशन का काम, जैसे आपने कहा कि अगर हम प्यार से, अच्छे वाइब्रेशन से करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, और प्रकृति को हम रिस्टोर कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें जो आध्यात्मिकता के प्रिंसिपल्स के हिसाब से कि हम सबको ध्यान रखना है, कुछ चीजें अगर हम ये करेंगे तो हम वापस प्रकृति को रिस्टोर कर पाएंगे, फिर से एक नई दुनिया बना पाएंगे, वो क्या चीजें होंगी, कुछ ऐसी चीजें हमें बताएं दोस्तों के लिए।
पहले तो हम अपनी स्थिति को बिल्कुल शांत स्वरूप बना कर रखें, क्योंकि हमारे जो वृत्ति अंदर चलती है उस अनुसार वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो अपनी वृत्ति को हम बिल्कुल शांत में बनाएं, ताकि जो भाई भाई का संबंध है वो याद करके हम उस प्रेम भावना से कार्य व्यवहार करें, तो वो वाइब्रेशंस प्रकृति तक जरूर पहुंचती है। और फिर साथ ही साथ मैं ये मानती हूँ कि जो आज हम कर्म करेंगे उसका फल भी हमें बिल्कुल प्राप्त होगा। तो यदि आज हम बीज लगाएंगे, चाहे वो कर्म फिलोसफी के हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट आप कहें परंतु प्रैक्टिकल फिजिकल, आप आज बीज डालो, उस पेड़ को अच्छी तरह से संभालो, थोड़े समय के बाद वो वृक्ष आपको शेड भी देगा, वो वृक्ष आपको फल भी देगा, आपको और नए से बीज भी देगा। तो जितना हम अब वो श्रेष्ठ कर्म करेंगे उसका फल हमें अवश्य ही मिलेगा, स्पिरिचुअल हिसाब से और फिजिकल हिसाब से भी। तीसरी बात मैं कहेंगी स्वच्छता। जहां पर गंदगी होती है वहां पर जान नहीं रह सकती। आप सोचो कि अपने जीवन के लिए हम कहेंगे अपने स्थान को स्वच्छ बनाकर रखें तो हम शांति से जी सकेंगे। यदि वो स्वच्छता नहीं होगी तो फिर मन में भी मौज होंगी परंतु तबीयत पर भी उसका कुछ न कुछ इफेक्ट आएगा जरूर। तो मैं मानती हूँ कि जो अपनी धरती और सारा पानी को हम लोगों ने गंदा कर दिया है उसको यदि हम स्वच्छ बनाएं, जो भारत में बहुत समय से ये अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत, मैं मानती हूँ कि ये बहुत बहुत आवश्यक है एनवायरमेंट के लिए भी। तो एनवायरमेंट हेल्थ दोनों बातों का कनेक्शन इसके साथ आ जाता तो हम अपने मन को भी स्वच्छ बना कर रखें, हम अपने स्थान को भी स्वच्छ बनाएं और जहां से हम पास करते हैं उस रास्ते को भी हम स्वच्छ बनाकर चलें। तो मैं समझती हूँ कि स्वच्छता से फिर से वो जो सुंदरता वातावरण की हो सकती है, वायुमंडल की हो सकती है, वो फिर से हम ला सकते हैं। तो ये हमें पुरुषार्थ करना होगा। ये तीन बातें विशेष ध्यान पर रखें तो फिर मैं समझती बहुत कुछ आगे के लिए हम नए संसार की स्वप्न कर सकते।
जी, हमारे एक दोस्त ने एक सवाल पूछा है फेसबुक पे। वो कहते हैं कि एक कॉमन आदमी होने के नाते, एक कॉमन इंसान होने के नाते, अगर मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ मैं अपने लाइफ में चेंज लाता हूँ, तो डे टू डे इन चेंजेस से एनवायरनमेंट पे कुछ असर होगा? और डे टू डे अगर मुझे कुछ करना चाहिए तो हर दिन मैं क्या कर सकता
हूँ? तो ये जो तीन बातें अभी बता चुके उसमें कुछ खर्चे की बात ही नहीं है। उसमें कोई भी साधारण बच्चा भी हो, बड़ बुजुर्ग भी हो, ये तीन बातें तो जरूर रख सकते, क्योंकि जीवन के लिए ये तो आवश्यक ही है। अपनी मन की शांति, बिल्कुल अहिंसक वृत्ति, और फिर साथ साथ इतना हम बीज डालते जाएं, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनाते जाएं। मानो कि आज मैंने कुछ आपके लिए काम किया, छोटा सा काम, मैं देख रही हूँ कि आप प्यास में हो और आपके सामने कुछ पानी नहीं है, मैं आपके लिए पानी ला कर दी, तो वो जो मैंने वन एक्ट ऑफ काइंडनेस किया, देखने वाले 100 होंगे या 10 भी हो सकते हैं या 2 भी हो सकते, परंतु जो भी देखने वाले हैं उन्हों पर भी वही प्रभाव पड़ेगा और वो भी फिर ऐसे ही करने लगेंगे। बिल्कुल ये रियलिटी है, जो हम देखते हैं फिर उस अनुसार उसका इम्पल्स हमारे अंदर जागृत होता कि हम भी ऐसे जरूर कुछ करें। तो मैंने हार्वर्ड की एक एक्सपेरिमेंट थी, मैं डिटेल नहीं बताती हूँ, परंतु उन्होंने बताया वन एक्ट ऑफ काइंडनेस का 125 लोगों पर असर पड़ता। 5 के ऊपर पड़ा, वो 5 कुछ करेंगे, वो 5 औरों के ऊपर असर आएगा, कम से कम 125। तो आप सोचो कि यदि आज मैं ये सोचूं कि मुझे मन को बिल्कुल स्वच्छ बना के रखना है, हरे के प्रति शुभ भावना रखनी है, तो वो तो मैं सब कुछ कर सकती। बाकी एक और एडिशनल बात मैं ये कहेंगी कि जितना हमारा वैष्णव डाइट होगा उतना हमारी बचत भी होगी, क्योंकि जो भारत के अंदर सब्जियां, फल, अनाज आदि आदि, भारत भरपूर है इन सब चीजों से। तो यदि हम उसको स्वीकार करते हैं, हमारी बचत भी होगी, तबीयत भी अच्छी रहेगी, परंतु एनवायरमेंट पर भी बहुत उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो हर एक कर सकता। अपने आदि शास्त्रों में तो यही है कि हर इंसान को वैष्णव भोजन स्वीकार करना है, क्योंकि हमें किसी और को दुख नहीं देना है।
बिल्कुल, भोजन के ऊपर आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। ओजस हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े थे और उन्होंने ये प्रश्न पूछा था। ओजस, मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर मिला है। एक और आखिरी प्रश्न ले लेता हूँ प्लास्टिक के बारे में। दीपा गुप्ता हमारे साथ हैं, वो कहते हैं हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम किसी जीव को दुख नहीं दें, मगर हम देखते हैं प्लास्टिक्स हमारे लाइफ का एक अनअवॉइडेबल हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में प्लास्टिक्स के यूज के बारे में हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ इट, ये पूछते हैं, बट कैसे इसका रैशनल यूज किया जा सके प्लास्टिक का। दीपा,
दो बातों का प्रैक्टिकल मैं बताती हूँ। एक तो आजकल हम लोग माउंट आबू में इस प्रकार की प्लास्टिक यूज कर सकते हैं विच इज नॉट मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्सेज से बनी है और थोड़े समय के अंदर उसका अंत भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि प्लास्टिक जो नॉर्मल है पेट्रोकेमिकल्स वाली वो तो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक चलती रहती है, परंतु नहीं, ये जो प्लास्टिक्स आजकल हम यूज कर रहे हैं आबू में तो उनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, परंतु जो प्लास्टिक का काम होता है कोई भी चीज को रैप करने का, सेफ गार्ड करने का, वो काम भी हो रहा। तो कुछ ऐसी चीजें मिल रही है आजकल जो आप लोग सोच सकते हैं मिल सकती। और फिर दूसरा, मैंने ये भी सुना है कि आजकल कहाँ कहाँ एक्सपेरिमेंट चल रही है बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया सारे प्लास्टिक्स को खा सके, या एल्गी, एल्गी भी है जो प्लास्टिक्स को खा लेती है, तो जो सागर में या पानी में यदि हम उस बैक्टीरिया या एल्गी का इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है उसका भी कुछ रिडक्शन हो सकता। परंतु अब जबकि हमें ये जानकारी है तो हम कभी भी वन यूज प्लास्टिक न यूज करें, ये हरेक के ऊपर चॉइस है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। जैसे कई बार ऐसे भी होता है कि डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज करनी पड़ती है, कुछ कुछ कारण ऐसे बनते। भारत में तो अपने पास लीव्स ऐसे आते हैं जिसको यूज कर सकते हैं प्लास्टिक के बदले में, परंतु जो आजकल बायोडिग्रेडेबल थ्रो अवे प्लास्टिक्स जो प्लेट्स वगैरह आती हैं उसका भी इस्तेमाल हो सकता। यदि हमारे बुद्धि में कोई बात ध्यान पर आ जाती फिर उसका रिसर्च करके हम लोग उसका खोज करके इस जवाब निकाल सकते।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बताया कि आज हम अपने दिमाग का, अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा निकल कर आ सकता है, बहुत कुछ क्रिएटिव और बहुत कुछ रिक्रिएटिव भी चीजें हम कर सकते हैं, और रीइमेजिन रिक्रिएट करने से हम नेचुरली रिस्टोर कर पाएंगे। मेडिटेशन हम सबको अपने बुद्धि में क्लैरिटी लाने में, दृढ़ निश्चय करने में हेल्प करता है, और हमने देखा है कि जो लोग मेडिटेट करते हैं वो प्रकृति के लिए भी मेडिटेट करते हैं। तो जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ मिनट हम सभी साथियों को खास पर्यावरण दिवस पर लाइव आपके साथ मेडिटेशन कराएं, ताकि हम सभी प्रकृति के लिए वो ग्रैटिट्यूड और मेडिटेट करके गुड विशेस भेज सकें।
जी धन्यवाद। अंदर की यात्रा करते और मन में ये प्रश्न आता कि मैं कौन हूं, और आवाज आता कि मैं इस शरीर से अलग आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप इस प्रकृति के बने हुए शरीर से, मैं चैतन्य शक्ति अविनाशी शक्ति प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप आनंद स्वरूप मैं आत्मा हूं। इस स्थिति में निराकार परम पिता परम आत्मा ज्योति स्वरूप शिव के साथ बुद्धि का योग लगता, परमात्मा शांति का सागर प्यार का सागर सत्य स्वरूप पतित पावन, आनंद का सागर, परमात्मा द्वारा मुझ आत्मा तक की किरणें पहुंच रही, और यही किरणें शांति के, पवित्रता के, सत्यता के फैलती जा रही सब मनुष्यात्मा को यही किरणें पहुंच रही, पशु पंछी जीव जंतु सभी तक ये किरणें पहुंच रही, और प्रकृति के तत्व आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी इन सबको ये वाइब्रेशंस पहुंचते, सभी शांत शीतल होकर के प्रकृति और पुरुष का सुंदर संयोग फिर से शुरुआत होता। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका कि आप लंदन से सीधे हमारे साथ जुड़े विश्व पर्यावरण दिवस पर, और बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस हमें मिली हैं कि हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, और हमारे हाथ में ये चीजें हैं। एक सकारात्मक चिंतन से फिर से हम नई सृष्टि की पुनर्रचना कर सकते हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
ओम शांति।
पर्यावरण दिवस पर ये थे ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जयंती, जो ब्रह्मा कुमारी के यूरोपीय देशों के कार्यक्रमों की निदेशिका हैं, और उनसे हमने बहुत ही सुंदर मेडिटेशन सीखा कि हमारे शुद्ध वाइब्रेशन से, हमारे शुभ संकल्पों से सृष्टि की पुनर्रचना की जा सकती है। आइए, ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय के ज्ञान सरोवर परिसर की बात आज दीदी ने की है, और उसी ज्ञान सरोवर परिसर से आपके लिए लाइव मेडिटेशन फॉर अर्थ लेकर आए हैं। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय के एक बहुत ही जाने माने आर्टिस्ट, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी ब्रदर डेविड हैं, जो पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से ज्ञान सरोवर कैंपस में रह रहे हैं। जिस कैंपस को आप पीछे देख रहे हैं वो एकदम हरा भरा है, और ये मनुष्यों की कमाल है कि अगर वो ठान लें कि कुछ करना है, एक अच्छा संकल्प ले लें, तो बहुत कुछ हो सकता है। हेलो डेविड, वेलकम टू द प्रोग्राम।
थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। यस, It's a wonderful opportunity to be here, and I know the environment, and this has been a big part of my whole life, this life, because I spent time in the outback in Australia, and I had connection with the native people, indigenous people, and I really felt I understood the importance of the environment and how much I take from the environment. And I had wonderful experiences of even when I took a little bit more from the environment that I actually needed from where I was living, I had a very strong feeling that this was outside a natural law of us all. If we take just what we need from the environment, almost like everything is provided for us. And this was like such a powerful impact at the time that I felt, yes, of course, if I take just what I need, then everything is provided, and I feel this is really for everyone. And that was such a lesson, especially living in an environment where all the nature's really in its, as much in its pristine form, because this place I was living was beautiful freshwater spring. It was completely natural, completely unpolluted. And it was a real feeling that this is really the ultimate, like, consciousness that if I really just have what I need, then it's really everything's provided for everyone. So, and of course, now this time I'll be playing a little bit of music, and I really feel also that the vibration we give out is also impacting the environment and everything and everyone. as well as the elements in nature. So thank you for this invitation.
Thank you, David. David अभी हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति करेंगे. लाइव म्यूजिक हमारे साथ होगा. हम सब धरती के लिए, इस पर्यावरण के लिए शुभ भावनाएं देंगे, गुड विशेस देंगे. और डेविड कह रहे थे कि अगर प्रकृति से हम ज्यादा लेते हैं या जितना चाहिए उससे अधिक लेते हैं तो हम प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं. जो कुछ भी हम ले रहे हैं, लेते समय सोचें कि हम क्या ले रहे हैं, और देते समय भी ये सोचें कि हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं. अगर रिटर्न में हम प्रकृति को कुछ दे सकते हैं तो हम प्रकृति को शुभकामनाएं दे सकते हैं, हमारे अच्छे वाइब्रेशंस दे सकते हैं. तो डेविड, आज ज्ञान सरोवर के परिसर में, ब्रह्मा कुमारी इसका जो मुख्यालय परिसर है, एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, वहां के कैंपस से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं. तो प्रकृति के साथ हम मेडिटेट करेंगे. अगर आप मेडिटेशन नहीं जानते तो प्रकृति के लिए सुंदर विचार मन में लाएं कि प्रकृति शांत है, वो शुद्ध हो रही है, वो पवित्र हो रही है, आनंद की किरणें प्रकृति में छा रही हैं. ऐसे संकल्प कीजिए. अगर आपके लिए ये भी मुश्किल है तो आप सिट बैक कीजिए, म्यूजिक को रिलैक्स कीजिए और अपने स्क्रीन पे जो प्रकृति के सुंदर दृश्य नजर आएंगे उसे देखते हुए अपने मन को आनंद से भरिए. और हमारे मन का आनंद प्रकृति को भी आनंदित करता है. David, over to you for the music.
Thank you.
दोस्तों, डेविड अपने आप में एक सेल्फ ट्रेन म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, उन्होंने हजारों चित्र बनाए हैं, हजारों मेडिटेशन म्यूजिक ट्रैक्स बनाए हैं और आज वो फ्लूट पर आपके साथ निभा रहे थे, एक और इंस्ट्रूमेंट के साथ वो हमारे साथ होंगे। डेविड,
थैंक यू। सो आई कंटिन्यू?
यस प्लीज। तो आप सभी बैठकर इस म्यूजिक को एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए। Please continue, David. आप में से कुछ साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं. देर आर सम ऑफ आवर फ्रेंड्स हु हैव रिटन कमेंट्स फॉर द म्यूजिक डेविड एंड दे से इट इज वेरी सूदिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड आई एम ज्योतिर्मय सेज इट वाज फैंटास्टिक. आई थिंक ऑल ऑफ यू जो भी आप अपने कमेंट्स लिखना चाहते हैं वो कमेंट्स लिख सकते हैं. मे आई नाउ रिक्वेस्ट यू डेविड फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स फॉर 5 मिनट्स और सो वी विल ऑल सिट हियर एंड रेडिएट लव फॉर द प्लैनेट. वी विल ऑल रेडिएट गुड विशेस फॉर the entire environment and let this plant heal as quickly as possible with our good wishes. So a final piece for all of our friends. There is one more comment that has come in. Jyoti Sharma says, last year I put a tree near my house and in my mother's and my father's name, and I feel so good that the trees have grown up very nicely. So I think we all should plant a tree in the memory of our loved ones or anyone who would want to remember. Especially this year has been a difficult one for all of us. So let us all help each other in restoring the nature. So on the last note, David, we will close with a small piece of music from you again.
Okay.
Thank you, David, for that amazing piece of music. And this environment day, we have had such a memorable moment of listening to Sister Jayanti and listening to the beautiful music and the birds of Gyan Sarovar, and just filling in our eyes with the plants and the trees that are just behind you. What an environment day celebration, and what a beautiful way to bring it to a close. Thank you so much for joining in, David.
Thank you, Sridevi. Thank you, everyone.
Dosto, डेविड जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा था. ज्ञान सरोवर परिसर से हमने इस लाइव मेडिटेशन का आनंद लिया, ज्ञान सरोवर के सुंदर बगीचों से, वहां के पेड़ पौधों से, वहां के पंछियों की आवाज और डेविड के म्यूजिक से हमने आज के कार्यक्रम का समापन किया है. अधिक जानकारी के लिए, आज जो ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसे 10 दिन के नेचर फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, आप अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.brahmakumaris.com/WED2021 पर जा सकते हैं. वहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज और मेडिटेशन मिलेंगे जहां पर हम ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं. अगर आज ने आपके शाम के डेविड के लाइव मेडिटेशन म्यूजिक को एंजॉय किया है तो 11 तारीख को हमारे साथ जुड़ना न भूलें. सेम टाइम 4:30 to 5:30 डेविड हमारे साथ पूरे एक घंटे के लिए प्रकृति के बीच में बैठकर बहुत ही सुंदर म्यूजिकल इवनिंग हमें देंगे और प्रकृति के लिए, इस पूरे प्लैनेट के लिए हम मेडिटेट करेंगे. आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी. तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, अपने पर्यावरण का, अपने प्रकृति का रखिए ख्याल, और फिर हम सभी इस धरती को रीइमेजिन कर, रिक्रिएट और रिस्टोर कर सकते हैं. ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से मैं आपका दोस्त राजेश, मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार. Thank you.